निक और प्रियल की शॉपिंग हो चुकी थी। वे दोनों वापस पैलेस जाने के लिए गाड़ी में बैठे थे कि रूपाली कैब लेकर उन दोनों का पीछा करने लगी। निक ने एक हाथ से प्रियल का हाथ पकड़कर कहा, गुड़िया, मुझे अच्छा लगा कि आज तुमने खुद से मुझे शॉपिंग पर ले चलने के लिए कहा, वरना तो तुम्हारे ड्रामे ही नहीं खत्म होते कि मैं आपको पैसे दे दूंगा। लेकिन मैं आपको इनके भी पैसे दे दूंगी, प्रियल ने अपना हाथ निक के हाथ से अलग करके बोला। हम दोनों अलग हैं क्या? पहले तो तुमने कभी नहीं कहा कि छोटी छोटी चीज़ों के पैसे दे दूंगी। पहले तो तुम्हारी यही रट लगी रहती थी कि आप मुझे गिफ्ट नहीं देते। अब जब मैं दे रहा हूँ तो तुम ये सब बोलकर मुझे हटा रही हो। प्रियल ने कहा, जो मुझे चाहिए वो तो आप दे नहीं रहे। आपका साथ मेरे लिए सब गिफ्ट से बढ़कर है। आप साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर निक ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि तुम बड़ी हो गई हो। गाड़ी चलाते वक्त निक का ध्यान साइड मिरर में गया। अचानक उसने गाड़ी को पैलेस ले जाने के बजाय इधर उधर मेन रोड पर घुमाना शुरू कर दिया। पहले तो प्रियल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उसे निक की हरकत पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि उन्हें पहले से देर हो चुकी थी और रिसेप्शन पार्टी शुरू होने का समय हो रहा था। प्रियल ने इरिटेट होकर कहा, क्या कर रहे हो आप? हम रिसेप्शन के लिए लेट हो रहे हैं और आप हैं कि कब से गाड़ी को इधर से उधर घुमाए जा रहे हो। निक ने कहा, गुड़िया, साइड मिरर में ठीक से देखो, कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैं कब से नोटिस कर रहा था कि कोई कैब हमारे पीछे है। पहले तो मुझे लगा मेरे मन का वहम लोगा, लेकिन जब मैंने गाड़ी को उल्टा सीधा घुमाया तो वो भी हमारे पीछे उसी हिसाब से चल रही है जैसे हम जा रहे हैं। तुम भी अच्छे से जानती हो कि ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। हाँ, तो पीछा करने वाले को पता नहीं है ना कि गाड़ी में दो अडल्ट्स बैठे हैं। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है हमारे पीछे? निक ने कहा, हमारे पीछे नहीं गुड़िया, तुम्हारे पीछे। मैंने तो बाहर केप और गॉगल्स लगा रखे थे, तो मुझे कोई जान पहचान वाला भी नहीं पहचान पाएगा, लेकिन तुमने खुद के चेहरे को अच्छा खासा रिवील कर रखा था। इसका मतलब कोई ऐसा इंसान हमारे पीछे है जो जन्नत बाजार से रिलेटेड है। आई एम सॉरी निक, मेरी वजह से आप भी आज प्रॉब्लम में हो। निक ने थोड़े गुस्से में कहा, ये तो तुम्हें जन्नत बाजार जाने से पहले सोचना चाहिए था। तुम अच्छे से जानती हो इन लोगों का काम कहाँ कहाँ और किस हद तक फैला है। तुम जितना भी इनसे बचने की कोशिश कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं तो इनके जाल में फंस ही जाओगी। अब तो मेरा तुम्हें यूएसए ले जाना और भी ज़रूरी हो गया है, और मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मुझे इस मामले में ना तो तुम्हारी कोई ज़िद नहीं चलने वाली और ना ही कोई बहस सुनना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना तो कहीं भी रह लेना, लेकिन मैं तुम्हें इंडिया में नहीं रहने दूंगा। मैं यहाँ से तो तुम्हें बचा कर ले जाऊँगा, लेकिन आगे तुम्हें भी ध्यान रखना होगा। निक की बात का प्रियल ने कोई जवाब नहीं दिया। निक अभी गाड़ी को अलग अलग रोड पर उल्टा सीधा घुमाए जा रहा था। उधर वो टैक्सी ड्राइवर भी बेवजह गाड़ी को रोड पर घुमाते घुमाते परेशान हो चुका था। उसने गुस्से में टैक्सी वहीं रोक दी और बाहर निकलकर रूपाली के पास आया। ड्राइवर ने कहा, मैडम, आप बाहर निकलिए, आपका दिमाग तो खराब नहीं है जो पिछले दो घंटे से मुझे एक ही रोड पर 50 बार घुमा चुकी हैं। अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो आप मेरा क्यों टाइम खराब कर रही हैं? रूपाली ने आंखें दिखाकर कहा, अरे, पैसे तो दे रही हूँ, फिर क्यों मुंह चढ़ा रहा है? मैंने जो कहा वही कर। अगर वो गाड़ी आज मेरे हाथ से निकली ना तो मैं तुझे जान ले लूँगी। मैडम, आप जान भी किसी और की लीजिए और टैक्सी भी। अब अगर आप मेरी टैक्सी से नहीं उतरी तो मैं पुलिस वाले को बुला लूँगा, और वैसे भी मेरा मीटर डाउन हो रहा है। रूपाली ने भड़कते हुए कहा, अगर तूने गाड़ी नहीं चलाई तो भूल जाकर मैं तुझे 1 रुपया भी दूंगी। अरे, ऐसे कैसे नहीं दूंगी, पूरे 2 घंटे घुमा हूँ मैं उस गाड़ी के पीछे। मैं भी देखता हूँ कि आप मेरे पैसे कैसे नहीं देती। बोलते हुए टैक्सी ड्राइवर ने इधर उधर देखा तो उसे कुछ दूरी पर एक कांस्टेबल दिखाई दिया। वह चिल्लाते हुए उसे आवाज़ लगाकर कहा, अरे साहब, देखिए ना, ये मैडम मेरा भाड़ा नहीं दे रही। रूपाली टैक्सी से नहीं निकल रही थी तो ड्राइवर ने गुस्से में पास खड़े एक कांस्टेबल को बुला लिया। उन सबकी बहस के चक्कर में निक और प्रियल को वहां से भागने का मौका मिल गया, तो वहीं प्रियल के लखनऊ होने की खबर पूरे जन्नत बाजार में फैल चुकी थी। निक और प्रियल पैलेस पहुंचे, तब तक रिसेप्शन पार्टी शुरू हो चुकी थी। निक ने रास्ते में ही प्रियल को उन सब लोगों से कुछ भी बताने के लिए मना किया था। निक और प्रियल को लेट आता देखकर एवा गुस्से में उनके पास गई। एवा ने गुस्से में कहा, बहुत जल्दी आ गए तुम दोनों, हम लोग पिछले 2 घंटे से तुम दोनों का वेट कर रहे थे। फाइनली बेचारे जैन और आलिया को अकेले यहाँ तक आना पड़ा, और तुम प्रियल, मुझे लगा कि तुम रेडी होने के लिए किसी ब्यूटिशियन के पास गई होंगी, लेकिन तुमने तो अभी तक वही ड्रेस पहन रखी है। निक ने बहाना बनाया और कहा, हाँ, वो मैं गुड़िया को लॉन्ग ड्राइव पर ले गया था। एवा ने कहा, ये कोई टाइम है लॉन्ग ड्राइव पर जाने का? चलो, और टाइम तो वेस्ट मत करो, अब जल्दी से जाकर रेडी होकर आओ। प्रियल रेडी होने के लिए अपने रूम में चली गई तो उसके कुछ देर बाद निक भी तैयार होकर उसे लेने अपने कमरे में गया। बोलिए, कुछ चाहिए क्या आपको? प्रियल ने पूछा। निक ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये बताने के लिए आया था कि मैंने प्रियांक को भी जीनी के साथ वापस यूएसए भेज दिया था। सॉरी, मैं तुम्हें पहले बता नहीं पाया, लेकिन मैं नहीं चाहता हमारी वजह से बो पर कोई मुसीबत आए। अच्छा है ना कि परी भी यहाँ कबीर के पास रुक रही है? प्रियल ने कहा, मुझे डर लग रहा है। निक ने प्रियल को गले लगाते हुए कहा, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें छूकर तो देख, मैं जान ले लूंगा उसकी, प्रियल ने कहा। छोड़िए मुझे, सब नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं। अभी तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन रात को मुझे भी तुम्हारा इंतजार रहेगा। निक की बात सुनकर प्रियल शर्माते हुए वहां से नीचे चली गई, तो वहीं निक भी उसके पीछे पीछे मुस्कुराते हुए आ रहा था। मिस्टर मुखर्जी प्रोजेक्ट जन्नत से जुड़ी निचली टीम से फोन कॉल के जरिए मीटिंग कर रहे थे कि तभी वहां पर ऑफिसर शीना, जो कि जन्नत बाजार में रह रही थी, वह हाँफते हुए आई। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, इज एवरीथिंग ऑल राइट शीना? क्या ऐसी इमरजेंसी आ गई जो तुम अपनी जान को रिस्क में लेकर जन्नत बाजार से भागकर यहाँ आई हो? शीना ने कहा, ठीक बोल रहे हैं सर आप, आज तो मैं सच में अपनी जान रिस्क में डालकर यहाँ तक पहुँची हूँ। कैप्टन ने कहा है, यूएसए से आई हुई बाकी टीम, वो सब एक हफ्ते की छुट्टी पर है। तुम बताओ, कुछ हुआ है क्या? वहाँ जन्नत बाजार में तो सब कुछ सही चल रहा है ना? शीना ने कहा, जन्नत बाजार में कुछ भी सही नहीं चल रहा। रूपाली किसी काम से लखनऊ गई हुई थी और उसने वहाँ पर जन्नत को किसी के साथ देखा। उन लोगों ने तो नहीं पहचाना, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है जन्नत के साथ कैप्टन निक ही थे। रूपाली अभी भी लखनऊ में है और मुझे नहीं लगता जन्नत का वापस कोलकाता आना सही रहेगा। शीना, तुम अभी यहाँ से जाना चाहिए। थैंक यू सो मच इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पहुँचाने के लिए, लेकिन हमारा हर एक ऑफिसर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मिसेस शर्मा तक ये न्यूज़ पहुँचा दूंगा कि वो वापस कोलकाता ना आए। वैसे भी हम इस प्रोजेक्ट के अंतिम पड़ाव पर हैं और मैं अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर मुझे इसके लिए मिसेस शर्मा को इस प्रोजेक्ट जन्नत से किसी और प्रोजेक्ट में शिफ्ट भी करना पड़े तो वो भी मुझे मंजूर होगा।
मिस्टर मुखर्जी ने शीना को वापस भेज दिया, जबकि वो अप्रियल से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। मिस्टर मुखर्जी को निक का मैसेज आ चुका था कि वो कल वापस आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें प्रियल को इन्फॉर्म करके कोलकाता आने से रोकना बहुत ज़रूरी हो गया था। उन्होंने प्रियल को टेक्स्ट मैसेज किया और साथ ही उसके सिक्योरिटी के और भी इंतज़ाम करने शुरू कर दिए। रात के 1 बज रहे थे, रिसेप्शन पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। शादी अटेंड करने आए लगभग सभी मेहमान वहाँ से विदा लेने लगे थे। जान आलिया के साथ उसके घर पर चला गया, तो वहीं निक ने प्रियल की परमिशन के साथ परी को कबीर के घर के लिए मना लिया था। प्रियल कबीर का घर देखना चाहती थी, इसलिए वो निक के साथ उनके घर पर गई। अंकित और एवा कुछ समय साथ बिताने के लिए अंकित के होमटाउन शिमला चले गए। वो सब कबीर के घर पहुंचे, तब तक रात के 2 बज चुके थे और उसके घर में सब सोने जा चुके थे। कबीर के घर पर उसके अलावा उसकी 2 छोटी बहनें पंछी और पियाली और उसके पापा थे। उन सबको कबीर ने पहले ही परी का वहां रहने के बारे में बता दिया था और उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कबीर ने कहा, सॉरी प्रियल, हम आपको अभी पूरा घर नहीं घुमा पाएंगे क्योंकि सभी लोग सोने जा चुके हैं। परी ने कहा, हाँ मैं भी बहुत थक गई हूँ, तो मुझे मेरा रूम बता दोगे? ठीक है, फिर सुबह मिलते हैं, निक ने कहा। प्रियल इधर उधर देखकर बोली, कबीर तुम्हारा घर ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, इसे देखकर ही पता चल रहा है कि ये तुम्हारे पैलेस के जितना ही खूबसूरत है। प्रियल की बात पर कबीर मुस्कुरा दिया। कबीर निक और प्रियल को गेस्ट रूम में छोड़कर परी को भी सोने के लिए उसका रूम दिखाने चला गया। प्रियल भी काफ़ी थक चुकी थी और वो कमरे में आते ही बेड पर लेट गई। निक को उसे वैसे देख हंसी आने लगी। निक ने कहा, क्या? मैंने कुछ देर पहले क्या कहा था कि सोना नहीं है? थोड़ा तो आराम करने दीजिए, मैं थक गई हूँ। निक उसके पास जाकर लेटा और मुंह बनाते हुए कहा, बोरंग वाइफ, ये लो अपना मोबाइल जिसे तुम कहीं भी रखकर भूल जाती हो। प्रियल ने कहा, क्या ज़रूरत है बार बार चेक करने की? मुझे आपकी तरह बार बार फ़ोन चेक करने की आदत नहीं है। मुझ पर टॉन्ट मारना बंद करो और अपना मोबाइल चेक करो, कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। निक के जोर देने पर प्रियल ने अपना फ़ोन ऑन करके देखा तो उसमें मिस्टर मुखर्जी के मैसेज आए हुए थे। प्रियल ने वो मैसेजेस पढ़े तो उनमें मिस्टर मुखर्जी ने उसे कोलकाता आने से साफ मना कर दिया था और इसके साथ ही उसे 1 महीने के लिए इस मिशन से छुट्टी दे दी गई थी। जन्नत बाजार की लड़कियों को बाहर निकालने के लिए उसने अपना जी जान लगा दी थी। अब उसे इस तरह मिशन से बाहर निकलना पड़ रहा था, ये देखकर प्रियल की आंखों में आंसू आ गए। उसे रोता देख निक ने मैसेजेस चेक किए तो उसने कुछ नहीं बोला और वो भी उदास हो गया। प्रियल ने रोते हुए कहा, मुझे आपसे दूर नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी निक। ओ, तो आज शाम मार्केट में हमारे पीछे रूपाली थी, मैंने तुम्हें पहले ही केयरफुल रहने के लिए कहा था, अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। गुड़िया, तुम्हें भी कुछ दिनों के लिए कहीं जाना होगा, जब तुम्हें छुट्टी मिली ही है तो 1 महीने के लिए अमृतसर चली जाओ। प्रियल ने कहा, लेकिन आप? निक ने प्रियल के होंठों पर उंगली रखकर कहा, कुछ मत बोलो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पता है ना, प्रोजेक्ट जन्नत अपने अंतिम पड़ाव पर है, ऐसे में हमारी एक भी बेवकूफ़ी सब बर्बाद कर सकती है। प्रियल ने कहा, क्या आप इन 5 सालों में आई दूरियों को भूलकर आज की रात मुझे दोगे, प्लीज़? निक ने पूछा, तुम रेडी हो सब कुछ भूलकर मेरे करीब आने के लिए? निक की बात पर प्रियल ने अपनी पलकें झुका लीं, वो प्रियल के करीब आने लगा। निक ने प्रियल को अपनी बाहों में लिया और प्रियल भी अपने दिनों बाद उसे अपने करीब पाकर बस उसी में खो जाना चाहती थी। उसने निक के होंठों पर किस किया। निक का हाथ प्रियल की कमर पर था और दोनों एक दूसरे में ही खोए थे। गुड़िया, निक ने धीमे से कहा। प्रियल ने कहा, अब कुछ मत बोलिए आप, मुझे आपको फिर से पाना है निक, मुझे एक पत्नी होने के सारे हक चाहिए, प्लीज दूर जाने का मत बोलिएगा। निक ने प्रियल को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटाया। उसने उसके दुपट्टे को कंधे से हटाकर उसकी नेक पर किस किया। निक प्रियल के और करीब आने ही वाला था कि अचानक से दोनों के मोबाइल पर एक साथ मैसेज आया। प्रियल ने कहा, प्लीज मत चेक कीजिएगा, मुझे हमारे बीच ये मोबाइल भी नहीं चाहिए, मैंने आपसे बस आज की रात मांगी है, प्लीज। पता है ना अभी मिस्टर मुखर्जी का क्या मैसेज आया था, तुम तो वो भी चेक नहीं करने वाली थी। दोनों का एक साथ मोबाइल पर मैसेज आना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता प्रियल, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। प्रियल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुखर्जी कुछ भी बोले, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आज की रात हम दोनों के बीच सारी दूरियां मिट जाएंगी। निक ने हाँ भरी। प्रियल और निक ने अपने अपने मोबाइल को चेक किया तो दोनों को ही एक मेल आया हुआ था। वे दोनों हैरान थे कि वो मेल यूएसए कोर्ट की तरफ से था, जिसमें उन दोनों के डाइवोर्स की पहली हियरिंग से जुड़ी जानकारी दी हुई थी। मेल पढ़कर जहां निक हैरान था, तो वहीं प्रियल पागलों की तरह जोर जोर से रोने लगी। प्रियल ने रोते हुए कहा, मैंने गुस्से में आपसे डाइवोर्स मांगा था और आपने डाइवोर्स पेपर कोर्ट में सबमिट करवा दिए, क्यों निक? मैंने नहीं किया प्रियल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। प्रियल ने उठते हुए कहा, अब मुझे कुछ नहीं समझना समझाना, आपको जो करना है कीजिए। मैंने पेपर्स डस्टबिन में फेंक दिए थे, मुझे कुछ नहीं पता कि वो पेपर किसने सबमिट करवाए होंगे, उसने प्रियल के करीब आकर कहा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रियल ने निक को खुद से दूर धकेला। अब मुझे कुछ नहीं समझना, उसने रोते हुए कहा, पहले भी आप अच्छे से जानते थे कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, इसके बावजूद आपने मुझे घर से निकाल दिया। इतने सालों तक आपको मेरी कोई फिक्र नहीं थी कि मैं जिंदा भी हूं या मर गई, मैं यहां अचानक से मिल गई तो क्या यही दिन दिखाने के लिए फिर से अपने करीब लाए थे? निक भी इन सब की वजह से टूट गया था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, मैं क्यों तुमसे दूर होना चाहूंगा, मैं तो खुद तुमसे बहुत प्यार करता हूं गुड़िया, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो जाती है, फिर क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? हाँ निक, मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, फिर उसने गुस्से में कहा, भले ही मुझे आपसे दूर रहना पड़े, लेकिन मैं आपको कभी डाइवोर्स नहीं दूंगी। निक को समझ नहीं आ रहा था कि वो पेपर्स किसने सबमिट किए होंगे, तो वहीं प्रियल गुस्से में रूम का दरवाजा बाहर से बंद करके वहां से जा चुकी थी। निक ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, गुड़िया तुम ये ठीक नहीं कर रही हो मेरे साथ। गुस्से में उसने दरवाजे पर लात मारी, दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया। वहीं प्रियल वहां से रोते हुए निकल गई, क्यों मेरे प्यार का हर बार यही सबब देते हैं आप मुझे, निक आई हेट यू, अब मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। प्रियल ने जैसे तैसे खुद को संभाला और आरोही को कॉल करके कहा, हेलो आरू, मैं वापस घर आ रही हूँ। इससे पहले कि निक कॉल करके किसी और को वहां हेल्प के लिए बुलाता, प्रियल वहां से जा चुकी थी। वो कहां गई थी इसके बारे में निक को कोई अंदाजा नहीं था।